ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। होली का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नंदगांव के लोग भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों के रूप में होली खेलने बरसाते हैं। होली को लेकर दिल्लीवासी भी जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। तमिलनाडु में भगवान विष्णु के मंदिरों में तीर्थवारी का आयोजन होता है। गुजरात में भी होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में होली का त्योहार पारंपरिक भावना, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। उधर पंजाब में कल रोपड़ जिले में स्थित आनंदपुर साहिब में धार्मिक उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ होला मोहल्ला का पर्व शुरू हो गया है। ये 15 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का त्योहार होली खुशहाली और उत्साह लेकर आता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर्षोल्लास और आनंद से भरा यह त्योहार सभी के जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वच्छ, हरित और स्वस्थ शहर के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने से जुड़े कदमों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागों और एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि धूल प्रदूषण से निपटने के लिए मॉनसून के अलावा पूरे साल स्प्रिंकलर और स्मॉग गन तैनात किए जाएंगे। उन्होंने वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन की निगरानी के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रवर्तन टीमों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि स्वच्छ ऊर्जा और सतत शहरी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता के तहत राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में तब्दील किया जाएगा। ये घोषणा गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर 3 दिवसीय कार्यशाला और राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान की गई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलई ने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी से जनता का ध्यान हटाने का आरोप लगाया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम TASMAC के आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी और शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर छापे मारे गए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अन्नामलई ने कहा कि ईडी ने डिस्टिलरी से 1,000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा किया है, जिसे रिश्वत के रूप में भुगतान किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम के व्यवस्था में हेरफेर करके अपनी पार्टी के खजाने को भरने के लिए आम आदमी का शोषण कर रही है। इस बीच तमिलनाडु भाजपा ने 17 मार्च को चेन्नई में TASMAC मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच वह जन्म सिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दे। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में हस्ताक्षरित नीति 19 फरवरी के बाद पैदा हुए बच्चों को नागरिकता देने से इंकार करती है यदि उनके माता पिता अवैध रूप से अमरीका में हैं। ये सरकारी एजेंसियों को उनकी नागरिकता को मान्यता देने वाले दस्तावेज जारी करने या स्वीकार करने से भी रोकता है। इससे पहले मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन की निचली अदालतों ने आदेश को रोक दिया था और 3 अपील अदालतों ने प्रशासन के अनुरोधों को खारिज कर दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के युद्ध विराम के लिए सशर्त समर्थन व्यक्त किया है और इस बात पर जोर दिया है कि स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। मॉस्को में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन ने युद्ध विराम के संभावित उल्लंघन और यूक्रेन द्वारा युद्ध विराम अवधि का उपयोग अपनी सेनाओं को संगठित करने और पुनः हथियारों से सुसज्जित करने के लिए करने की संभावना के बारे में चिंताओं को उजागर किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात ब्रेबोर्न स्टेडियम में एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स पर 47 रनों से शानदार जीत के बाद फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।